नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता है। मैं हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हूँ और पिछले 2 सालों से अंतरवासना की नियमित पाठिका हूँ। मुझे सभी कहानियाँ बेहद अच्छी लगती हैं, तो मुझे लगा क्यों न मैं भी आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी के सच्चे अनुभव साझा करूं। बिग कॉक सेक्स कहानी में सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरी उम्र 28 वर्ष है, रंग बिल्कुल गोरा है, फिगर 34, 28, 36 की है और सबसे ज़रूरी चीज़ वो है मेरी फुद्दी। मैं बता दूं कि मेरी फुद्दी बिल्कुल गुलाबी रंग की है, जिसे देख कर हर मर्द के मुँह से पानी ही टपकने लगेगा। मैं पिछले 5 साल से देहरादून में जॉब करती हूँ। पिताजी फौज में थे और जब मैं 3-4 वर्ष की थी तभी कश्मीर में शहीद हो गए। उसके बाद माँ ने मुझे पाला। मैं अच्छे घर से हूँ लेकिन काफ़ी छोटी उम्र से ही अपनी मम्मी की चुदाई को देखती आई हूँ। जैसी चुदक्कड़ मेरी मम्मी है, मैं भी वैसी ही चुदक्कड़ हूँ। मेरी मम्मी मेरी दोस्त की तरह हो गई है। वो जिससे भी चुदती है सब कुछ मेरे साथ साझा करती है। मैं भी अपनी चुदाई की दास्तां उनको बताती रहती हूँ। हम दोनों आपस में खूब मज़े लेते हैं। तो ये बात पिछले लॉकडाउन के समय की है, जब मैं अपने ऑफिस के काम से दिल्ली गई थी। होटल में रुकी थी, ऑफिस का काम निपटाकर मुझे 1 हफ्ते बाद लौटना था, लेकिन तभी कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और मैं वहीं फंस गई। मेरे मामा की बेटी सौम्या दिल्ली में ही रहती थी, तो मैं मजबूरी में उसके पास रहने चली गई। सौम्या मेरी ही उम्र की थी तो हम दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। दिखने में काफ़ी गोरी और खूबसूरत भी है। जब मैं उसके फ्लैट पर पहुंची तो पहले से ही कोई लड़का था। मेरा परिचय भी उस लड़के से करवाया, तो वो उसकी मौसी का बेटा था, दिल्ली में ही अपना ट्रैवल का काम करता था। मैंने उसके बारे में सौम्या से 1-2 बार सुना था, लेकिन मिलना आज पहली बार हुआ था। हाय हेलो हुई। शरीर से वो हट्टा कट्टा और काफ़ी तगड़ा था, 31-32 साल का तो होगा। सौम्या ने बताया कि भैया उनके साथ ही रहते हैं। फिर उन्होंने मेरे सामान को रूम में रखवा दिया। रूम में बड़ा सा बेड था जिस पर 3-4 लोग आराम से सो सकते थे। जब रात हुई तो खाना खाया, तब भैया बोले तुम दोनों अंदर आराम से सो जाओ, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ लगा देना। उनके बात करने का ढंग बेहद नम्रता वाला था। वो बाहर हॉल में गद्दा लगा कर सो गए। सौम्या ने AC चालू करके मानो शिमला ही बना दिया। हम दोनों ने कपड़े चेंज किए और बातें करने लगी। काफ़ी सालों बाद मिलने की वजह से हमारी बातें देर रात तक चलती रही। करीब 15-20 दिन सब कुछ सही चला, फिर लॉकडाउन बढ़ गया। मैं काफ़ी उदास हो गई, मगर दूसरा कोई चारा था नहीं। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरी फुद्दी को बहुत बड़ा लंड मिला। मैं और सौम्या हर दिन की तरह सो रहे थे। मैं गहरी नींद में सोई हुई थी, तभी मुझे मेरे कंबल के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। पहले लगा कि कोई सपना देख रही हूँ, लेकिन काफ़ी देर तक ऐसा होता रहा जिस वजह से मेरी नींद खुल गई। समझने की कोशिश की क्या चल रहा है। कमरे में बहुत अंधेरा था, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे बगल में लेटी सौम्या अपनी फुद्दी चुदवा रही थी। उसकी चुदाई इतनी तेज हो रही थी कि पूरा कमरा पच पच की आवाज़ों से गूंज रहा था। मैं समझ गई कि शरीफ से दिखने वाली मेरी बहन इतनी भी शरीफ नहीं है। मैंने उसका ये रूप पहले नहीं देखा था। वो दोनों कानाफूसी में बातें भी कर रहे थे और बोल रहे थे कि अब और बर्दाश्त नहीं होगा। दोनों में खूब चुम्मा चाटी चल रही थी। उन दोनों को शायद लग रहा था कि मैं सो रही हूँ। काफ़ी देर तक चुदाई चलने के बाद सब शांत हो गया और इसके बाद मैं भी चुप हो गई। अगली सुबह मैंने सौम्या को एहसास नहीं होने दिया कि मुझे सब पता चल चुका है। 2-4 दिन बाद फिर ये सब स्टार्ट हो गया। फिर वो रात आई जब हम दोनों बहनों की चूत की चटनी बनने वाली थी। उस रात फिर मैं सो गई, लेकिन कुछ ही देर बाद मैंने दरवाज़ा बंद होने की आहट सुनी। दरवाज़ा बंद होने की वजह से पूरा अंधेरा था, बस हलचल से ही कुछ पता चल रहा था। तभी वो लोग किस करने लगे, धीरे धीरे माहौल बनने लगा। कुछ देर बाद उस दिन फिर से सौम्या की चुदाई शुरू हुई और बगल में लेटी हुई लड़की को चुदते हुए देखकर मुझे भी चुदवाने का मन करने लगा। मेरी उंगली मेरी पैंटी के ऊपर से ही मेरी फुद्दी को सहलाने लगी। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को संभाला और सोचने लगी कि कैसी है ये लड़की जो अपने भैया से चुदवा रही है। उधर उसकी बेरहमी से चुदाई हो रही थी। उन आवाज़ों से मेरे शरीर में मानो जैसे आग सी लग गई थी। लोग कहते हैं ना कि जब फुद्दी में आग लगती है तो दिमाग काम करना छोड़ देता है। मैंने संयम खो दिया और झट से मोबाइल का फ्लैश जला दिया। जैसे ही मैंने मोबाइल जलाया, सौम्या का चेहरा तो देखने लायक था। घबराहट के मारे वो बस मुझे देख रही थी, लेकिन भैया अब भी उसे चोद रहे थे। मैंने कहा, सौम्या ये क्या कर रही हो? इतना सुनते ही भैया उससे अलग हो गए और सौम्या मुझसे लिपट कर रोने लगी। भैया ने खुद को बेडशीट से लपेट लिया और बाहर चले गए। वो रोकर बोली, यार हर्षु, मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है, मगर मैं चाहकर भी ये रोक नहीं पाती। मैंने कहा, तू रो मत, मैं जानती हूँ तुझे अच्छा लगता है, लेकिन भाई के साथ ये सब करना ठीक नहीं। वो बोली, भाई का हथियार इतना बड़ा है कि मेरे पास और कोई चारा ही नहीं रहता। ये सुनकर मेरा मन भी मचलने लगा और मैंने पूछा, कब से चल रहा है ये? वो बोली, 2 साल हो गए, भैया मुझे अक्सर चोदते हैं, इतना मस्त लंड है उनका कि कोई भी दीवानी हो जाए। उसने तो मेरे मुंह की बात छीन ली थी ये कहकर कि तू भी एक बार ट्राई करके देख। मैंने शर्माने का नाटक किया और बोली, यार ऐसे नहीं होता है, मेरा तो नीचे पूरा जंगल उग गया है, वैसे भी अगर किसी को पता चलेगा तो बहुत बदनामी होगी। ये सुनकर सौम्या मेरा हाथ पकड़कर अपनी फुद्दी पर ले गई और बोली, देख नीचे के बालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने भी रखे हैं, यहाँ तो हम सिर्फ 3 हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरा मन अंदर से तो डगमग डगमग डोल ही रहा था, ऊपर से सौम्या की इन बातों ने उसे और भी भड़का दिया। उसका मूड अब ठीक हो गया था। वो बोली, 2 साल में केवल तुझे ही पता चला है अब तक, किसको पता चलेगा? इतना कहकर उसने भैया को आवाज़ लगाई तो कमरे में आए। सौम्या ने लाइट जलाने को बोला। जैसे ही लाइट जली, मेरी नज़रें सौम्या पर पड़ी। क्या खूबसूरत नंगा जिस्म था उसका, गोरा मुलायम, उसकी फुद्दी भी मेरी तरह गुलाबी थी। सौम्या ने भैया को बुलाकर कहा, आज तो आपकी लॉटरी लग गई है। भैया, मतलब? सौम्या, मेरे साथ साथ हर्षिता भी चुदेगी? मैंने शर्म से आंखें नीची कर ली। भैया पास आए और बोले, तो फिर नेक काम में देरी कैसी, मैं तो मरा जा रहा हूँ। सौम्या ने धीरे धीरे मेरे कपड़े निकालने शुरू किए। देखते ही देखते उसने मुझे पूरी नंगी कर दिया। मुझे शर्म आ रही थी तो मैंने अपने हाथ से फुद्दी को छिपाया। भैया ने मुझे अपने पास खींचा और एक झट में नंगा कर दिया। मेरी नज़र सीधे भैया के लंड पर पड़ी, इतना बड़ा और मोटा। मैं सौम्या से बोली, बाप रे, कैसे लेती है तू इतना बड़ा? यह कहकर मैंने अपने पांव पीछे खींच लिए। सौम्या बोली, एक बार घुसेगा तो निकालने का नाम नहीं लेगी, अपने हुस्न का दीदार तो करा। इतना बोलकर उसने मेरा हाथ मेरी फुद्दी से हटा दिया और बोली, तू तो सच में मेरी बहन है। भैया पास आकर मेरी फुद्दी को सहलाते हुए बोले, तुम दोनों कमाल हो, बहुत मज़ा आएगा हम तीनों को आज। इतने में सौम्या ने मेरा सिर पकड़ा और मुझे किस करने लगी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर भैया ने एक झटके में अपना लंड मेरी चूत में पेल दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ, मगर सौम्या ने मुझे कसकर जकड़ रखा था। अब वो धीरे धीरे मुझे चोदने लगी। सौम्या ने मुझे ढीला कर दिया और मेरी दोनों बाहों को फैला दिया। वो मेरे ऊपर चढ़कर मुझे चोदने लगे। पूरे कमरे में चुदाई की आवाज़ें गूंजने लगी। उनका लंड मेरी फुद्दी का कचूमर बना रहा था। अब सौम्या मुझसे अलग हो गई और मोबाइल चलाने लगी। मेरी आज तक किसी ने ऐसी चुदाई नहीं की थी। अब तो मैं शर्म हया को त्याग कर उठा उठा कर चुदवाने लगी थी। गुलाबी फुद्दी नसीब वालों को मिलती है और भैया को तो आज दो दो मिल गई थी। कुछ देर और चुदने के बाद मेरी फुद्दी ने पानी छोड़ दिया। धीरे धीरे मेरा मज़ा और भी बढ़ने लगा। भैया अभी भी मुझे चोद रहे थे। वो बोले, आज तो मैं तुम दोनों को नहीं छेड़ूंगा। वो मुझे किस करने लगे और मैं मज़ा लेने लगी। नीचे उनका लंड मेरी फुद्दी में तांडव मचा रहा था। करीब 20 मिनट से मुझे चोदे जा रहे थे। अब मेरी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन भैया रुक नहीं रहे थे। शताब्दी एक्सप्रेस बनकर मुझे चोद रहे थे। फिर मैंने सौम्या की मदद मांगी। उसने अपने पास आने का इशारा किया। मैंने कहा, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। उसने भैया से चुदाई रोकने को कहा, लेकिन भैया बोलते रहे कि नई नवेली मिली है, इसकी खातिरदारी तो करने दो। अब वो मेरे पास चुदवाते रहने के अलावा कोई चारा नहीं छोड़ रहे थे। मुझे ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। किसी ने सही कहा है कि जन्नत का दरवाज़ा लड़की की फुद्दी से होकर गुजरता है, और हम दोनों जन्नत का सुख भोग रहे थे। मैंने सोचा कि अब सौम्या की चुदाई की बारी है, मगर अब वो मुझे उठाकर टेबल के पास ले गए। एक टांग को अपने कंधे पर टिकाया और गांड को टेबल के सहारे अब वो खड़ी करके मेरी लेने लगे। करीब 1 मिनट मुझे इसी पोज में चोदा और मैं झड़ गई। उसके बाद बोले, बहुत स्वादिष्ट हो तुम दोनों चुदने के लिए बनी हो मेरी जान। आओ हम तीनों मिलकर जन्नत का नज़ारा लें। वो बोले, तुम्हारी खैर नहीं, देखो तुम्हारी चूत के साथ मैं क्या करता हूँ। मैं भी पीछे हटने वाली नहीं थी। मैंने भी ठान लिया था कि आज जो हो जाए इनका रस अपनी फुद्दी में टपकवा कर ही रहूँगी। अब उनकी रफ्तार और तेज हो गई, मेरी हालत ख़राब होने लगी। कुछ देर तक चोदने के बाद भैया ने अपना गर्मा गर्म माल मेरी फुद्दी की गहराइयों में छोड़ दिया और हम दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने अपना लंड जब मेरी चूत के अंदर से निकाला तो सौम्या उनके लंड को पकड़कर चाटने लगी। भैया बोले, जाने मन, थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर तुम्हारी खातिरदारी करता हूँ। मैं बिस्तर पर निढाल पड़ी हुई थी। रात के करीब 1:30 बज गए थे। सौम्या मेरी बगल में आकर लेटी और बोली, कैसा लगा मेरी जान? मैंने कहा, बहुत मादर चोद लंड है उनका। यह सुनकर सौम्या बोली, मादर चोद नहीं, बहन चोद कहो। अब भैया आकर हम दोनों के बीच में लेट गए और दोनों को दोनों हाथों से सहलाने लगे। धीरे धीरे उनका लंड फिर टाइट होने लगा। क्या देखकर सौम्या ने अपनी फुद्दी फिर भैया को परोस दी। बिना किसी देर के सौम्या के तोहफे को भैया ने कबूल किया और फकाफक उसे पीलने लगे। अब दोनों एक दूसरे में समा गए। पूरा कमरा चुदाई की आवाज़ों से गूंज उठा। काफ़ी देर तक चोदने के बाद भैया ने सारा माल सौम्या के चेहरे पर गिरा दिया। मैंने चेहरे से सारा माल चाट लिया। अब हम तीनों की कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह करीब 9 बजे जब मेरी नींद खुली तो सौम्या मेरे लिए चाय लेकर आई थी। मैं लड़खड़ाते हुए हॉल में आई, चला ही नहीं जा रहा था। सौम्या मेरे बगल में बैठकर बोली, एक रात में ही ये हाल है, अभी तो लॉकडाउन ख़त्म होने में देर है। मैंने कहा, मेरी फुद्दी की तो बैंड बज गई है यार, मगर सच बताऊँ तो इतना मज़ा पहले कभी नहीं आया। सौम्या ने कहा, मज़ा तो आएगा ही, 9 इंच का है। मैंने कहा, अच्छा, मैं नहीं मानती। सौम्या, तू चल, मैं दिखाती हूँ। ये कहकर वो मुझे अंदर ले गई। भैया सोए हुए थे, उनका लंड भी आराम फरमा रहा था। सौम्या ने भाई का लंड मुंह में लिया और चूस चूस कर उसको खड़ा करने लगी। थोड़ी देर में पूरा खड़ा हो गया तो उसे इंच टेप से नापा और 9 इंच को पार कर रहा था। सौम्या ने कहा, अब यकीन हुआ तुझे? मैंने कहा, हाँ। मैं नहाने चली गई। नहाते वक्त भी रात की चुदाई के बारे में सोच रही थी। इस बिग कॉक सेक्स के बाद मेरा और सौम्या का रिश्ता गहरा हो गया। खाने के बाद सौम्या ने मुझे दवाई दी और बोली, अगली बार अंदर मत गिरवाना, अगर प्रेग्नेंट हो गई तो लफड़ा हो जाएगा। इसके बाद जब तक लॉकडाउन ख़त्म हुआ तब तक मैं वहीं रही और कई बार भैया के बड़े से लंड से चुदी। अब देहरादून वापस आ चुकी हूँ, लेकिन उस सबको काफ़ी मिस करती।